जाए, और आना किसी को किसी के पक्ष में नहीं है। वो अपने अपनी फौज लेकर के खड़े हैं, एक तरफ रावण सेना एक तरफ वानर सेना, सेनाएं खड़ी है, जीतना है नहीं किसी को। वो तो जब राम लक्ष्मण और देखो जो मूल नायक होते हैं वो जब आमने सामने होते हैं तभी फैसला होता है, बाकी लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तो आचार्य कहते हैं कि मनुष्य पर्याय में पाप के कारण जीव अनेक कष्ट भोगता है और फिर नए नए पाप कमाता है, कैसी दुर्जत दशा है, पुण्यम को भी ना अज्यदि। बोले कि कोई पुण्य कमाने की नहीं सोचता, पापों में ही जीवन बीत जाता है और मनुष्य पर्याय हाथ से निकल जाती है, जीव फिर संसार में भटक जाता है। आगे और भी संसार भ्रमण का वर्णन है। सवेरे 47वीं गाथा का स्वाध्याय करते हुए अपन ने पढ़ा था, एसो जनो यह मनुष्य पावेण पाप के कारण दुःखम वसेण दुष्कर्म के प्रभाव से सबो जायदे सब कुछ बन जाता है, नौकर बन जाता है, भिखारी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, कोड़ी भी बनता है और न जाने वह क्या क्या बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन पावम पुनरवि करेति फिर भी पाप करता है, पाप के कारण इतनी दुर्दशा को प्राप्त होने के बाद पुनः पाप करता है। पुण्यम को भी न अज्जेति, पुण्य का अर्जन कोई भी नहीं करता। इसके आगे कहते हैं विरलो अज्जदि पुण्यम सम्मादिट्ठी वैहि संयुक्तो उपसंभावे सहितो निंदन गरहाहि संयुक्तो। वै ही संयुक्तो विरलो सम्मादिट्ठी पुण्यम अज्यति, व्रतों से युक्त कोई बिरला सम्यक दृष्टि ही पुण्य का अर्जन करता है। कैसा होता है? उपसम भावे सहितो, शांत भावों से युक्त होता है। और कैसा होता है? निंदन गरहा ही संयुक्तो, निंदा और गरहा से संयुक्त होता है। बिरलो माने बिरला, बिरला का मतलब होता है टाटा बिरला नहीं, बिरला यानी कोई सैकड़ों में कोई एक आध। वे ही संयुक्त सम्मादिट्ठि, व्रतों से संयुक्त सम्यक दृष्टि पुण्यम अज्यति, पुण्य का अर्जन करता है। निंदन गरहा ही संयुक्त, निंदा और गरहा से संयुक्त रहता है। उपसम भावे सहितो, उपशम भाव से सहित होता है। इसकी टीका देखिए कैसी है। विरल स्वल्पो जन, विरल माने बहुत कम, स्वल्प जन यानी मनुष्य। पुण्यम, पुण्य के कितने भेद, द्वाचत्वारिंशत् प्रकृति भेद भिन्नम प्रशस्तम कर्म, 42 भेद होते हैं पुण्य के। शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत् पापम, तो इतने पुण्यों को 42 प्रकृतियों को अर्जयति उपार्जयति संचिनोति, अर्जित करता है उपार्जित करता है संचित करता है। कि दृक्षासन कैसा होता हुआ, सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता हुआ। उपशम वेदक क्षायिक सम्यक तो युक्त है, तीन में से कोई भी सम्यक से युक्त हो सकता है। कौन से तीन? उपशम सम्यक, वेदक सम्यक, वेदक का दूसरा नाम क्षायोपशमिक भी है, और क्षायिक सम्यक से युक्त। पुनः कीदृक और कैसा, व्रतैः द्वादश प्रकारैः पंच महाव्रतैर्वा संयुक्तः सहितः, 12 प्रकार के व्रत हो सकते हैं अथवा पंच महाव्रतों से संयुक्त भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव जरूरी नहीं है कि अणुव्रती हो, अथवा ये भी नियम नहीं है कि महाव्रती ही हो, अणुव्रती भी हो सकता है महाव्रती भी हो सकता है। उपशम स्वभावेन उत्तम क्षमादि लक्षणेन सहितः, उपशम स्वभाव का मतलब क्या है? उत्तम क्षमादि है नाम जिनके, ऐसे उपशम भावों से सहित परिणत सहित होता है, परिणत होता है। पुनरपकी दृक्ष और कैसा होता है, तो निंदने इत्यादि निंदनम आत्मकृत दुष्कर्मण स्वयं प्रकाशनम। निंदा और गर्हा दो बातों से युक्त होगा। निंदा का अर्थ बतला रहे हैं आत्मकृत दुष्कर्मण, अपने किए हुए खोटे कार्य का स्वयं प्रकाशनम, अपने ही लिए प्रकाशित कर देना, स्वयं प्रकट करना कि देखो मैंने गलत किया। गलत करने के बाद ये भाव आना अंदर कि देखो मैंने गलत किया। फिर दूसरा ग्रहण, गुरु साक्षी का आत्मदोक्ष प्रकाशनम, गुरु साक्षी का आत्मदोक्ष प्रकाशनम साभ्यमित्तम, गुरु की साक्षी में अपने दोष को प्रकट कर देना, मैंने गलत किया, वो गरहा कहलाती है। और अपने स्वयं में प्रकट करना कि मैं गलत हूँ, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, गलत किया, ये निंदा कहलाती है। तो इन दोनों से युक्त रहता हुआ जो बिरला कोई सम्यक दृष्टि अल्प मात्रा में है वो पुण्य कमाता है। लेकिन पुण्य जुद सविदि सदि इठवियोयम अनिठ संजोयम भर हो विसाही मानो परिज्यो लहुय भाएण। इठवियोयम अनिठ संजोयम पुण्य जुदस विदि सदि। लेकिन संसार ऐसा विचित्र है कि यहाँ पर इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग पुण्य युक्त जीव के भी पाया जाता है, दिखाई देता है। दृष्टांत दिया साही मानो भरहो भी, अभिमान सहित भरत भी, चक्रवर्ती भरत भी, लहुए भाईण परिज्यो, लघु भ्रात्रा यानी भाई द्वारा परिज्यत माने पराजित हो गया, हराया गया। भरत बाहुबली को नहीं जीत सके, हार गया। पंडित जी ने भावार्थ थोड़ा सा विस्तार में दिया। सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, नहीं देख रहे थे हम कि इसमें क्या बात है। तो अगर विशेष बात निकले तो हम आपको बता दें। यहाँ पुण्य का मतलब ये समझ लो कि पाप को छोड़ने से ही पुण्य माना जाता है। बहुत महत्व की गाथाएं हैं ये। पुण्यार्जन कौन करता है तो वये ही संयुक्तो सम्मदिट्ठि लिखा है, यानी व्रतों से युक्त सम्यक दृष्टि की बात करी है। अकेले सम्यक दृष्टि की बात यहाँ पर नहीं की, क्योंकि अकेला सम्यक दृष्टि तो चारों गतियों में है, यहाँ तो मनुष्य गति का प्रकरण चल रहा है। और फिर अव्रत ही दूसरे शब्दों में पाप कहलाता है। अव्रत और पाप एकार्थवाची है। व्रत किसको कहा, व्रत की परिभाषा बताइए, तत्वार्थ में क्या है। हिंसा नृतस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, विरति का अर्थ होता है विरमणम, विरति है त्याग। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग जब व्रत है तो अव्रत क्या हुआ? पाप हुआ कि नहीं? पापों को छोड़ना व्रत है, तो पापों को न छोड़ना अव्रत है। अर्थात अव्रत का मतलब यह हुआ पाप करना। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जो व्रतों से युक्त सम्यक दृष्टि है वह पुण्य कमाता है, बाकी पाप का बंध सभी जीव करते रहते हैं। और फिर दृष्टांत दिया कि पुण्य से युक्त कोई मनुष्य है, भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया, साहू मानो अभिमान सहित है लेकिन तो भी छोटे भाई द्वारा हरा दिया गया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग उनके जीवन में भी घटित होते हैं। श्रीमदादि देव पुत्रोपि प्रथम चक्रवर्त्यपि साभिमानः सन् सगर्वः सन् पराजितः पराजयं नीतः। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का पुत्र होकर भी, प्रथम चक्रवर्ती होकर भी हरा दिया गया। अनुजेन श्री बाहुबलिना लघुक भ्रात्रा, छोटे भाई द्वारा हरा दिया गया। सयलठ विषय जो बहुपुण्य सविण सवहाहुदी तम पुण्यम पिणकस्सवि सव्वम जीर्णिच्छिदं लहदी। क्या बात लिखी, गजब। सैलठ विषय जो सकलार्थ विषय योग, सब पदार्थ रूपी विषयों का जो योग है, समागम है, वह बहु पुण्यस्विन सवहाहुदी, बहुत पुण्यशाली के भी सर्वथा नहीं हो सकता। माने बड़े से बड़ा पुण्यशाली हो लेकिन उसको सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ तो कम रहेगा ही। तम पुण्यम पिण कस्सवि, ऐसा पुण्य भी किसी के पास नहीं होता। सवम जेण इच्छिदम लहदी, जिससे जितनी जितनी इच्छाएं हो रही वो सारी की सारी पूरी हो जाए, ऐसा पुण्य भी किसी, जितनी इष्ट वस्तुएं हैं वो सारी उपलब्ध हो जाए, ऐसा पुण्य भी किसी का नहीं हो सकता। फिर छोटे पुण्य वालों की क्या चर्चा, जब बड़े बड़े पुण्यशालियों को भी सब कुछ नहीं मिल सकता तो फिर छोटे लोगों की क्या बात है। और इसका दृष्टांत ऐसा है, इसको समझने के लिए कोई उदाहरण भी जरूरी है। प्रवचन सार ग्रंथ में आया कि यदि सब कुछ मिल गया होता देवों को, देवगति में जो इंद्रपद है वहाँ किस बात की कमी है, जो चाहिए सब है लेकिन फिर भी इच्छित उसके मन की तृप्ति नहीं है। बोले कि अगर वो उतने वैभव के साथ सुखी होता तो फिर विषयों का सेवन क्यों करता। वो विषयों का सेवन अर्थात इंद्रिय सुखों की तरफ जा रहा है, इससे सिद्ध होता है सुखी जीव सुख की तरफ नहीं जाता। जो दुखी है वही सुख की तरफ झुकता है। जब इंद्रिय सुख की तरफ जा रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि इंद्र भी सुखी नहीं है। कस्सविणथि कलत्तम अहव कलत्तमिण पुत्त संपत्ति अहते सिं संपत्ति तह विसरो ओहवे देहो। कस्सविणथि कलत्तम, किसी के पास स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, अहव कलत्तम न पुत्र संपत्ति, अथवा पत्नी है कलत्र है लेकिन पुत्र रूपी संपदा नहीं है, अथवा संपत्ति की दूसरी छाया संप्राप्ति भी बन जाती है। संपत्ति हिंदी में भी संपत्ति रख लो और संप्राप्ति भी बन सकता है उसकी छाया में, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पत्नी है लेकिन पुत्र नहीं है। तेसिन संपत्ति अथवा दोनों है तो देहो सरो हवे, शरीर में रोग लगे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं परेशान है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि अभावों का नाम ही संसार है, कोई ना कोई अभाव अवश्य रहेगा संसार में। अहनीरो देहो तो धन धन नाननेय संपत्ति, अधन धनन हो देहु तो मरणम झत्ति ढुक्के दी। अथवा निरोग शरीर मिल गया तो धन धान्य की संपत्ति नहीं मिल पाई, यानी गरीब हो गए, शरीर तो ठीक है लेकिन ये सब संपदाएं नहीं है। धन धनम हो दी हो, अथवा धन धान्य भी हो गए तो मरणम झत्ति ढुक्के, तो मरण जो है वो झट से आ गया, यानी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है विपत्ति में। पूरी तरह से संतुष्टि संसार में असंभव है। कस विदुठ कलतम कस विदुवयण वसणियो बुधु वसण वसणियो पुत्तो, कस वि अरिसंबंधु कस विदुहिदा विदुच्चर्या। कस विदुठ कलतम, किसी की पत्नी दुष्ट होती है, बेलन लेकर तैयार रहती है हमेशा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है हमेशा। कस्य दुर्व्यसन व्यसनियों पुत्र, और किसी का खोटा पुत्र है, दुर्व्यसनों से व्यसनित है, दारूखोर है और दूसरे प्रकार के व्यसन करता है, दुर्व्यसनों से व्यसनित है, वशीभूत। कस्य अरिसम बंधु, और किसी का बंधु जो है भाई है, वो अरिसम दुश्मन जैसा है। माने वो बंधु भी बंधु जैसा नहीं है, शत्रु जैसा है। ऐसा भी होता है कई बार, दो भाइयों के कितने केसेस चल रहे हैं अभी अदालतों में। और कस विदुहिदा विदुच्चर्या, और किसी की बेटी भी दुश्चरित्रा होती है, अर्थात सदाचारिणी नहीं होती है। मर्द सुपुत्तो कस्वी कस्वि महिला विनस्यदे इच्छा, कस्वि अग्निपलितम गृहं कुटुंबं च दज्ये। कस्वि सुपुत्तो मरदि, किसी का अच्छा पुत्र है तो वो मर जाता है। कस्वि मणि महिला इच्छा विनस्यदे, किसी की इष्ट स्त्री जो होती है वो मरण को प्राप्त हो जाती है। एक तो पहले क्या कहा कि दुष्ट स्त्री है, और फिर व्यसनी पुत्र है। अब अगर सुपुत्र मिल गया तो उसका मरण हो गया, अथवा इष्ट स्त्री मिली, अनुकूल स्त्री मिली, तो वो भी विनश्यते विनष्ट हो गई। कस्वि अग्निपलितम गृहम, किसी का अग्नि से प्रलयित माने प्रलय को प्राप्त जो ग्रह घर है वह डज्जे दग्ध हो जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। कुटुंबंच, और उस आग में कई बार कुटुंब भी जल करके खत्म हो जाता है। एवं मरणय गदीये नाना दुखाई विसहमाणो भी नविधम मे कुणदि महिम आरंभम नेय परिचय। एवं इस तरह मनुष्य गति में नाना दुखाई विसहमाण, अनेक दुखों को सहता हुआ भी धम्मे मैं नविकुणदि, धर्म में मति नहीं लगाता, इतनी सब तकलीफें सहन करता है फिर भी धर्म में उसकी रुचि नहीं लगती, आरंभम नेय परिचय। और धर्म में अगर रुचि हो भी जाए तो पैसा कमाना नहीं छोड़ता, पैसा कमाना नहीं छोड़ता है ना, ये आरंभम नहीं परिचय, आरंभ का परित्याग नहीं कर पाता। माने हाय पैसा हाय धन, ये आदत नहीं छूट पाती। धर्म में मन तो लगता है कि हाँ ये धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो अपना पुराना रवैया है उसको छोड़ नहीं पाता। छोड़ने का मतलब एक देश छोड़ना या सकल त्याग कर देना। एक देश छोड़ने का मतलब कि इतना रखेंगे, सीमा रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे इसमें मोह में, ज़्यादा लोभ नहीं करेंगे, तो उतना भी नहीं करता। क्या दुर्दशा है संसारी जीव की, इतना विकट चित्रण है ये। इसको अगर थोड़ा गहराई से कोई चिंतन करें तो असर हो सकता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ ही होता है बार बार विचार करो इस बारे में। ये तो एक बार आए, सुन लिया, चले गए घर, फिर वापस अपने गोरख धंधे में फंस गए, ऐसे नहीं। इसको बार बार चिंतन किया जाता है, अनुप्रेक्षा का अर्थ ही वो है। तो मनुष्य गति में अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ भी धर्म में मति नहीं लगाता, और लगाता है तो फिर पैसे का मोह नहीं छोड़ पाता, ये दशा है। सधनो विहो दिनि धनो धनहीनो तहय ईसरो होदी, राया विहो दि भिच्चु बिच्चो वियहूदि नर नाहु। इस संसार में नाटक चलता रहता है, पुण्य और पाप का खेल ही है। तो सधनो निधनो होदी, धनवान निर्धन बन जाता है। अकृत पुण्य की माँ मुखिया की पत्नी थी, और गरीबी यहाँ तक उनके जीवन में आ गई कि दूसरे गांव के मुखिया की रसोईन बन गई। तो धनवान भी निर्धन बन जाता है, और धनहीनों तह ये ईश्वर हो दी, और धन रहित जो है वो ईश्वर अर्थात प्रमुख बन जाता है, मुखिया बन जाता है। जैसे सुकृत पुण्य, अकृत पुण्य के पिता का निधन हो गया, उसके बाद उसका नौकर जो सुकृत पुण्य था वो गांव का मुखिया बन गया। राया विहोदि भिच्चो, राजा जो है वह भृत्य बन जाता है, नौकर बन जाता है। और भिच्चो वियतः होदि नर ना हो, और नौकर जो है वो नरनाथ अर्थात राजा बन जाता है। सब परिवर्तनशील है संसार में, ज़्यादा फूलना भी उचित नहीं है, और धर्म को भूलना भी उचित नहीं है। एक चार लाइन हमने पढ़ी थी, जबलपुर का एक मंदिर हनुमान ताल में है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी है। संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा, है निश दिवस सी घूमती, सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल दुख से रोता वही। शुभम चक्रवर्ती कहाँ पैदा हुआ था, और 16 साल की उम्र, मुनिराज बोले उसकी माँ से, बहुत दुखी थी माँ कि कहाँ तो हम क्षत्रिय वंश के राजघराने के, और मैं स्वयं अयोध्या की रानी, लेकिन आज कर्म योग से ये दशा हुई है कि यहाँ पर कोई नौकरानी भी नहीं है मेरे साथ, कोई सेवा करने वाली दासी भी नहीं है, और यहाँ धरती पर जमीन पर पुत्र को मैंने जन्म दिया है। मुनिराज के जब दर्शन हुए तो पूछा कि हे मुनिवर, क्या होगा हमारा, हम जैसे दुखी लोगों का भविष्य क्या होगा। तब मुनिराज बोलते हैं कि ये तो वर्तमान स्थिति है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है वो 16 वर्ष की उम्र में भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती होने वाला है, अष्टम चक्रवर्ती। और उसकी पहचान ये है कि अभी यहाँ से जाकर तुम जिस आश्रम में निवास करने वाली हो वहाँ ये तुम्हारा बेटा कढ़ाई के तेल में तलते हुए पुओं को अपने हाथ से निकाल कर खा जाएगा। न इसका हाथ जलेगा, न इसका मुंह जलेगा, ये इसके चक्रवर्ती होने का लक्षण है। ऐसा हुआ कुछ समय के बाद, जब वो चलने लगा, दौड़ने लगा, तो उसने एक दिन रसोई घर में जाकर कढ़ाई में से निकाल के खा लिया पुए। वो रसोई भी घबरा गए और फिर वहाँ सब देख करके दंग रह गए कि ये कैसा बालक है, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर 16 वर्ष की उम्र में उसने परशुराम को पराजित करके अयोध्या का साम्राज्य अपने हाथ में प्राप्त कर लिया और कुछ ही समय में 6 खंड पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली और 21 बार पृथ्वी से ब्राह्मणों का नाश किया उसने। लेकिन अंत में विषयों में आसक्ति के कारण जिह्वा इंद्रिय के रस में वो ऐसा उलझ जाता है कि पानी पर नमोकार मंत्र मिटकर अपने लिख कर अपने पैरों से मिटाता है और सप्तम पृथ्वी में नारक बनता है। तो एक सामान्य मनुष्य भी राजा बन सकता है और राजा भी एक नौकर बन सकता है, ये गति है कर्मों की। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको, क्षत्रिय वंश में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि चाचा के छल से जो राजपुत्र है वो नौकर बन गया और फिर उसने किसी और को या स्वयं राज्य हड़प लिया, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। कई उदाहरण मिलते हैं। तो राज तृष्णा जैसी बुरी चीज़ क्या है दुनिया में? जिस प्रकार यहाँ वणिक वर्ग में, व्यापारियों में धन की तृष्णा होती है, वैसे क्षत्रियों में राज की तृष्णा होती है, ब्राह्मणों में खाने पीने की तृष्णा होती है, और सभी जगह कहीं में कोई ना कोई तृष्णा तो लगी रहती है। उसमें क्या, लड्डू मिल जाए तो ब्राह्मण खुश। ये दशा है संसार की। सत्तु विहोदि मित्तु, मित्तु विय जाहत जायदे तहा सत्तु, कम्म विभाग वसादो ईसु संसार सब भावो। सत्तु विहोदि मित्तु, शत्रु मित्र बन जाता है, और मित्तु विय जायदे तहा, और मित्र शत्रु बन जाता है। कोई परमानेंट नहीं है। आप सोचो कि भाई उसको भी मित्र बना लिया जाए, उसको भी बना लिया जाए, तो फिर ये जो मित्र है पहले वाला वो शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है। कर्म विभाग बसा दो, इसका कारण क्या है? कर्मों के विपाक अर्थात फल के प्रभाव से, यानी कर्मों के फल का ऐसा प्रभाव है कि ऐसे परिणाम हो जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन में कर्मों की प्रधानता नहीं है। कर्मवाद नाम का एक अन्य मत है, वहाँ कर्म प्रधान है। जैन दर्शन में कर्म और नौकर्म, निमित्त उपादान, कारण कार्य व्यवस्था जैन दर्शन की निमित्त उपादान दोनों के अधीन है, एक के आश्रित नहीं है। अंतरंग निमित्त कर्म है तो उसके लिए फल प्राप्ति हेतु कोई बाह्य संयोग भी अपेक्षित है, और दोनों का अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। अब निमित्त की अपेक्षा से विचार करें तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुण्य योग से ही निमित्त कार्य करेगा, वरना निमित्त क्या कर सकता है? कभी कभी किसी के पाप का उदय है, लेकिन उस नौकर्म के निमित्त से उसका पाप कर्म शांत भी हो सकता है। जैसे मान लो आपको बहुत कषाय आ रही है, मरने मारने की तैयारी चल रही है, और फिर भाग्य साथ भी नहीं दे रहा है, उसी समय अगर कोई आपका मित्र आपको अपने गांव ले जाए, बोले कि यहाँ रहो तुम 2-5 महीने यहाँ रहो, तो क्या होता है? क्षेत्र बदल जाता है और फिर वो काल निकल जाता है अशुभ का, और फिर वो मित्र रूपी नौकर्म का निमित्त भी ऐसा संयोग है, उसको कुछ शास्त्र भी पढ़ा हुआ है, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी जानता है, गुरु का संयोग भी वहाँ पर आए दिन मिलता रहता है। तो इन समागमों से उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसका अनिष्ट दूर हो जाता है। तो इसलिए जैन दर्शन में पुण्य के उदय से ही सब कुछ होता है ऐसा एकांत नहीं है। ये बड़ी महत्व की बात है, क्योंकि अभी बहुत एकांत पकड़ करके लोग चले जा रहे हैं, और फिर जो लोग इसको नहीं मानते उसको एकदम मिथ्या दृष्टि समझते हैं।